जब जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तू पल भर में सुलझाए, जब जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तू पल भर में सुलझाए, सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा, सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो।
ओम शांति। सभी महानात्माएं प्रेम से बोलिएगा ओम शांति। सब खुश है, सबकी तबीयत भी अच्छी है, अच्छी है तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे। मीठे बाबा बोली, और थोड़ा गुड़ डालिए, शक्कर डालिए, प्यार डालिए, खुशी मिक्स कीजिएगा। बोलिएगा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। है ना, दो दिन से खुशी में झूम रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद तो देना जरूरी है। डायमंड हॉल में बैठने का भाग्य मिला है, जिस हॉल में अनेकों बार बाबा का अवतरण हुआ, ऐसे हॉल में बैठने का भाग्य मिला, इसलिए पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, मुबारक हो। और खुशी से अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। कैसा भाग्य है देखो, जब सारा संसार भय चिंता तनाव कितना कुछ हो रहा है दुनिया में, ऐसे में प्रभु चिंतन में बैठने का भाग्य मिला, कितना बड़ा भाग्य है। तो आज तो मल्टी मिलियन टाइम्स फॉर्चुनेट हो, क्योंकि आज आप सुनेंगे डायमंड हॉल में बैठकर बाबा की प्यार भरी मीठी मुरली, जिसको कहेंगे ज्ञान मुरली। हमारी दादी प्रकाशमणि होती थी, वो क्या करती थी, मुरली लेती थी, कभी कभी मुरली पढ़ते पढ़ते ऐसे करके ऐसा करती थी, है? क्योंकि क्या है मुरली, मुरली क्या है, भगवान का प्रेम पत्र। क्या है मुरली, थोड़ा प्रेम से तो बोलिए। आपने कभी सुना कि भगवान आपके नाम पर प्रेम पत्र लिख रहा है? लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप अनुभव करेंगे, आपके नाम से स्वयं भगवान प्रेम पत्र लिख रहा है। कितना खुशी है, मुस्कुराओ तो सही है। मेरे नाम का पत्र भगवान की तरफ से, हमने तो बहुत पत्र लिखे लेकिन भगवान की तरफ से। मुरली अक्षर सुनते ही क्या बात याद आती है, काट के मुरली याद आती है। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई तो गाय जानवर जितने भी बंधी हुई थी ना, वो भी तोड़कर अपने आप ही जादू से आ जाते थे, कहते हैं इतनी जादू थी मुरली में। तो अब आप सोचिए, अब फ्लूट म्यूजिक सुनते हैं तो मजा आता है, किस किस को आता है, मजा आता है, आता है ना, राइट है। लेकिन कोई परिस्थिति आ जाए, किसी चाहने वाले का डेथ हो जाए, क्या उस समय फ्लूट म्यूजिक सुनना पसंद आएगा? क्यों, अभी तो अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। मुरली वो है जो हर परिस्थिति में हमें स्टेबिलिटी दे। मुरली केवल पढ़ना, लिसनिंग, डिस्कसिंग, रीडिंग नहीं है। एक पॉइंट भी आपने लिया, उस पर काम किया, इंटीग्रेट किया, अपना बना लिया एक पॉइंट पे। इसलिए मुरली का एक एक महावाक्य करोड़ों की वैल्यू है इसकी, क्योंकि इससे जीवन बन जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, स्वयं भगवान के महावाक्य हम जीवात्माओं के प्रति। स्वयं परमात्मा मुरली के माध्यम से हम जीव आत्माओं से बात करते हैं। रोज भगवान बात करे अच्छा लगेगा या नहीं? थोड़ा मुस्कुराइए, अच्छा लगेगा रोज भगवान बात करें। ऐसे इस सभा में कई बैठे होंगे जिनको ये अनुभव हुआ होगा कि हमने सोचा मन में, किसी को नहीं सुनाया, लेकिन हमें जवाब मुरली से मिला। ऐसे कौन है? देखो, जो भी हाथ उठा रहे हैं फिर से हाथ उठाए देखें। अब जो नई हाथ उठा रहे हैं, जरा मुंडी घुमा के देख लेना इनको। यह है प्रूफ, अपने लिए ताली तो बजाओ, प्रूफ है ना। इंसान प्रूफ मांगता है, कैसे पता चले? तो परमात्मा के महावाक्य त्रिकालदर्शी बनकर भगवान ने मुरली चलाई। जिस समय चलाई, कब? 1936 से लेकर 69 के बीच में। लेकिन आज भी ऐसा लगता है, कल कोई परिस्थिति आई और मुरली में बैठे, अच्छे स्थिति में बैठे, तो ऐसा लगे कि जैसे आज बाबा को कैसे पता मेरा ये प्रॉब्लम है और बाबा ने मुरली में मेरा जवाब दे दिया, मुझे प्रश्न का जवाब मिला। इतनी जादू, ये है सच्ची जादू। इसलिए राजयोग में चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, राजयोग में शुद्धिकरण, प्योरिटी, पवित्र बनो, योगी बनो। इसलिए विष्णु के चार अलंकार दिखाए बाबा ने इन ज्ञान मुरली में बताया। नर और नारी के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कहा जाता है, यानी नर को भी नारी को भी पालन करना है। क्या करना है? चक्र दिखाया है, इसका मतलब वेस्ट थॉट्स, इसको भस्म कर दो। इसलिए चक्र दिखाया, प्योरिटी इन थॉट्स। शंख दिखाया, क्यों शंख दिखाया? प्योरिटी इन वर्ड्स। क्यों गदा दिखाई? प्योरिटी इन एक्शंस। कमल क्यों दिखाया? प्योरिटी इन लाइफ। तो ज्ञान मुरली के द्वारा परमात्मा ने परम सत्य बताया, पवित्र बनोगे तो योगी बनोगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र, सोचना कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ। इसीलिए ऐसा नहीं चलेगा, जीवन में भी वैसा ही मिलेगा। सोचोगे कुछ, पाओगे कुछ, बोलोगे कुछ। जब तक प्योरिटी नहीं है तब तक प्राप्ति नहीं है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। सुख शांति चाहते हो तो पवित्रता ले आओ जीवन में, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। भले व्हाइट कपड़ा भले नहीं पहने, लेकिन जीवन में धारणा में ले आए पवित्रता को। कैसे ले आए? वो सारी बातें भगवान ने ज्ञान मुरली से सुनाया है। परम पिता परमात्मा ज्ञान मुरली के द्वारा हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा देते हैं। परम शिक्षक बनकर स्वयं भगवान ज्ञान मुरली के द्वारा पढ़ाई पढ़ाते हैं। परम सतगुरु बनकर ज्ञान मुरली के द्वारा परमात्मा वरदान देते हैं। भक्ति में हम एक वरदान के लिए तरसते थे, ज्ञान मुरली के माध्यम से रोज भगवान वरदान देता है। खुशी है रोज भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हे भगवान एक वरदान दे दो, नहीं, हर एक महावाक्य इस पे काम करोगे, हर एक महावाक्य आपके लिए वरदान साबित होगा, गारंटी है, करके देखिए। तो ज्ञान मुरली हम आत्माओं का संपर्क परमात्मा से कराती है। तो जितनी बातें आपने सुना बहनों के माध्यम से, संबंधों में मधुरता, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी बातें कहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, ज्ञान मुरली से। यह सोर्स आत्मा से संबंधित बातें बहनों ने कलेक्ट किया, उसका संकलन किया, आत्मा के लेसन के रूप में आपके समक्ष रखा। परमात्मा के महावाक्य यानी परमात्मा ने खुद अपना परिचय इन मुरलियों के द्वारा दी है, उन महावाक्यों का संकलन किया बहनों ने और आपके समक्ष परमात्मा के लेसन के रूप में आपको बताया। संबंधों में मधुरता कैसे लाए, ये कहां से बातें मिली, ज्ञान मुरली के द्वारा। आप वया 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 जाओगे या डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहोगे, बोलिए कौन कौन डायरेक्ट कनेक्शन चाहते हैं। अभी भी मुस्कुराते नहीं है, थोड़ा मुस्कुराते हुए हाथ उठाए, आज एक दिन मुस्कुराओ, बाद में आपकी मर्जी है। तो हम अजीव आत्माओं का कनेक्शन भगवान से कैसी होगी, मुरली के माध्यम से। इसीलिए मुरली ऊर्जा का स्रोत है, जिसे कहते हैं ना भाई, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है, तो परमात्मा कौन है, ज्ञान का सागर। हम आत्माएं कौन है, ज्ञान स्वरूप आत्माएं। हमारा मिलन उनसे कैसे होगा, मुरली के माध्यम से। क्लियर है, क्लियर है। तो प्रमाण क्या मिला, मुरली सुनते सुनते, यानी दो तीन दिन से जो बातें सुन रहे हो, ये कहाँ से लिया गया है, ज्ञान मुरली से। और आनंद आया सबको, आनंद आया, ये है प्रूफ आपके जीवन में आपके पास आनंद है। तीन घंटा सुना तो भी था क्या नहीं, ये प्रूफ है आपके, आपने अनुभव कर लिया। तो इसीलिए ज्ञान मुरली, ज्ञान सूर्य परमात्मा से ऊर्जा प्राप्ति का आधार है। जैसे सूर्य ऊर्जा देता है, सनलाइट, इसी तरह ज्ञान मुरली अनंत ऊर्जा का स्रोत है, अनंत। जब चारों तरफ बहुत तनाव हो, ऐसे में एकमात्र सकारात्मक धाराएं मुरली के माध्यम से आपको मिलती जाएंगी। इसलिए श्रीमद् भगवद् गीता में कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। तो ज्ञान मुरली के माध्यम से भगवान ने कहा कि मैं आ चुका हूं, जो तुमने भक्ति में बुलाया, भक्ति का फल देने में आ चुका हूं, सोमनाथ बनकर सोमरस पिलाता है ज्ञान मुरली के द्वारा, जागेश्वर बनकर जागृति लेकर आता है, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, जागृत रहो, चलते फिरते मूर्ति की तरह मत चलो। महाकालेश्वर बनकर काल पर जीत प्राप्त करता है, कराता है ज्ञान मुरली के द्वारा, और ब्रह्मा बाबा ने पूरा कर दिखाया। ओंकारेश्वर बनकर सच्चे ओम का रहस्य समझाता है और स्वधर्म में स्थित कराता है परमात्मा ज्ञान मुरली के द्वारा। केदारेश्वर केदारनाथ बनकर खेद से मुक्त कराता है, पांच विकारों के कैद से मुक्ति दिलाता है ज्ञान मुरली के माध्यम से। नागेश्वर बनकर जो संस्कार आपको दुख दे रहे हैं, कई बार प्रश्न है, मैं चाहती तो हूं लेकिन हो नहीं पाता, उसके लिए कनेक्शन चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं ज्ञान मुरली ज्ञान और भावना का मिश्रण है। मात्र ज्ञान पर्याप्त नहीं है, साथ साथ क्या चाहिए, क्या चाहिए? अब पता है ना, गुस्सा नहीं करना है, पता है? हाथ उठाना किस किस को पता है, थोड़ा मुस्कुराते हुए, और किस किस ने छोड़ रखा है वो हाथ उठाए। केवल देखो कि वो भी पता नहीं है या नहीं है, वो इतना भी पता नहीं है अभी भी है। अच्छा, जो कौन है जिन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हाथ उठाओ, कभी नहीं दिया। अच्छा, जो कौन है जो कभी किसी ने पर चिंतन नहीं किया, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, कभी नहीं जीवन में? देखो एक दो है, पता है ना, छोड़ दो फिर। ये सारी बातें अंदर से दुख देगी आपको, और आप कभी भी बच नहीं सकते। आपने सोचा अच्छा मैंने दुख दिया, किसको पता है? आपके आत्मा में इंप्रेशन बन गई, उसको पता है सब कुछ, कौन से फैमिली में कहाँ जाना है, कहाँ जन्म लेना है, आत्मा के पास सब कैलकुलेशन है, बच नहीं सकते। इसलिए भगवान ने कर्मों की गुह्यगति मुरली के माध्यम से बताई। बबुलनाथ बनकर कैसे जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगार करो, ज्ञान मुरली के माध्यम से परमात्मा बताते हैं। इसलिए तो हम उनकी पूजा करते हैं। धर्म स्थापक जितने भी है, कि जितने धर्मों के धर्म स्थापक है, उनकी हम महिमा क्यों करते हैं? उनके द्वारा परमात्मा ने संदेश भेजा, कुछ तो बदल लो अपने आप को। और जहां जहां संदेश भेजा तो वहां वहां का आवाम उसको फॉलो किया। जैसे क्राइस्ट ने कहा, क्या कहा, झूठ मत बोलो, प्यार से रहो, उनको ही सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन समय प्रति समय धर्म स्थापक आए, धर्म के द्वारा धर्म सिखाना मना शांति में रहो। अब धर्म के नाम पर ही झगड़ा कर रहे हैं। इसीलिए सत्ता संतुलन मुरली के माध्यम से परमात्मा हमें सिखाते हैं। धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, अर्थ भेद, अर्थ सत्ता, जाति भेद, रंग भेद, मत भेद, कितने भेद हैं, हर समय झगड़ा है। बस सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इन ज्ञान मुरली से आपको मिलेगा। इसलिए ओम शांति से होगी सुख शांति गारंटी है। लेकिन ओम शांति यानी आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसीलिए तो हम सारा टाइम शांति में रह सकते हैं। गुस्सा सारा टाइम कर सकते हो? कौन है जो कर सकता है? हाँ, तो सारा टाइम गुस्सा कर सकते हैं क्या 24 आवर्स? कि वो हमारा ओरिजिनल क्वालिटी नहीं है। अब जितने भी प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में, कल तो कोई बोल रहे थे भाई मुझे तो क्या मैं भूल नहीं सकती हूँ या पता नहीं क्या तो बोल रहे थे, वो कुछ समय के लिए है लेकिन हम चिंतन कर 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 के उसको परमानेंट ले लेते हैं। जैसे सफेद साड़ी है, इसमें कोई दाग होगा ना, दाग पर ध्यान जाएगा, बाकी सारा सफेद है वो नहीं पता, क्योंकि सारा टाइम तो शांति में ही तो बैठे हो, ये आपका ओरिजिनल नेचर है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, ये भगवान ने ज्ञान मूल्य के माध्यम से बताई है। तो इसीलिए ज्ञान मुरली स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट है। किस किसके पास आ गया पासपोर्ट? तुम उसको राते नहीं हो, पासपोर्ट मिल गया कहाँ के लिए? नई दुनिया में जाने के लिए। खुशी है कि नहीं है या ऐसे ही बैठे हो? तो क्या पासपोर्ट मिला तो वीजा भी मिला? वीजा क्या है? इसीलिए ज्ञान मुरली है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसको डाल दो आत्मा रूपी कंप्यूटर में, कभी भी वायरस नहीं आएगा, विकारो रूपी वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि एकमात्र डायलिंग सॉफ्टवेयर है ज्ञान मुरली, जिसके माध्यम से आप अदा सदा काल स्टेबल रह सकते हो। कोई भी बात आ जाए आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। परिस्थिति बाहर है, व्यक्ति बाहर है, किसी की हरकत, किसी की आदत, कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसी स्थिति बनाई तो इसीलिए भगवान ने लक्ष्य दिया स्व परिवर्तन से। बोलिए, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये है लक्ष्य। शुद्धिकरण, मास्टरी ओवर माय फीलिंग्स, कंट्रोल ओवर माय इमोशंस, राजा, राजयोग से बनोगे मन का राजा। अब तुम मन के गुलाम हो, है कोई राजा इधर बैठे? अपने आप को खुश करने के लिए भले हाथ उठा दो, मन आपको चला रहा है, गुलाम बन चुके हैं फिर भी खुश है, चलो मन के गुलाम है, चलेगा। मन के ऊपर मास्टरी लेकर आए। इसीलिए जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो क्या बनेंगे? इंजीनियर बनेंगे। तो यहाँ क्यों आए आप सभी? बोलिए, महानात्मा क्यों आए यहाँ? मनुष्य से देवता, नरेसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। अब मात्र ड्रेस पहनने से बन जाओगे? नहीं ना, मात्र जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, क्या वो बन जाएगा श्री लक्ष्मी श्री नारायण? और बनना भी क्यों है वो भी तो समझो। तो कहने का तात्पर्य, कम से कम जो इस लक्ष्य को स्वीकार करते हैं, ठीक है, हम श्री लक्ष्मी जैसे बनेंगे, श्री लक्ष्मी जैसे बनना माना प्योरिटी लाइफ में आ जाएगा। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, हर कोई शांति में तो रहना चाहता है ना, क्यों? अनुभव सिखाता है। क्या सिखाता है? अशांत रहोगे तो हेल्थ के प्रॉब्लम्स आएंगे, शांत रहोगे तो हेल्दी रह सकते हैं। अब चॉइस आपका, क्या करना है मुझे? तो इसीलिए जो महान आत्माएं, जो माताएं, जो बहनें या कोई भाई जो समझते हैं, हम श्री लक्ष्मी बनने के लक्ष्य को भगवान ने जो दिया वो हम स्वीकार करते हैं, खड़े हो जाए थोड़ा प्यार से, खुशी से, अभी श्री लक्ष्मी बनेंगे। अच्छा, कौन कौन श्री नारायण बनना चाहते हैं? हाँ, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, जो बैठे हैं उनका दूसरा प्रोग्राम है, कोई बात नहीं, ताली तो बजा दो अपने लिए। ठीक है, ठीक ठीक बैठ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना माना कोई ऐसे ड्रेस पहन के नहीं बैठ जाना, लेकिन जैसे वो पवित्र है, एक सिंबल चाहिए ना, व्यक्ति को चाहिए भाई कैसे हम बनेंगे, इतना तो पता हो। क्यों लोग एडवोकेट बनते हैं या फिर डॉक्टर बनते हैं? उनको पता है लक्ष्य होगा तो लक्षण आएगा, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। तो इसीलिए ज्ञान मुरली के माध्यम से भगवान ने लक्ष्य दिया. कई लोग पूछते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मैं उनसे ही पूछती हूँ आप बताओ आप क्या चाहते हो. चाहते तो है लेकिन पता नहीं हम चाह रहे हैं, मेन तो प्रॉब्लम वो है. कई बार कहीं कहते हैं ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो भी तो चाहना है मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो इसीलिए ज्ञान मुरली को ध्यान से सुनना है, प्यार से सुनना है, खुशी से सुनना है, क्योंकि यू आर हियरिंग गॉड्स माइंड. भगवान कैसे सोचता है पता है क्या आपको? हाँ, ज्ञान मुरली के माध्यम से परमात्मा कैसे सोचते हैं वो हमारे समक्ष है, गॉड्स माइंड. तो इसीलिए चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, हर कोई प्यार को महसूस तो कर सकता है ना. भगवान ने सिंपल भाषा में मुरली चलाई है ताकि पढ़े लिखे भी समझ जाए अनपढ़े भी समझ जाए. इसीलिए जैसे शरीर के लिए भोजन का महत्व है, एक दिन भोजन नहीं किया तो 10 लोगों को सुनाएंगे पता है मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, पूछा नहीं अपने आप ही बताएंगे. जैसे शरीर के लिए भोजन का महत्व है, दर्दी के लिए दवाई का महत्व है, स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए स्नान का महत्व है, आराम के लिए नींद का महत्व है, मुसाफिरों के लिए गाइड का महत्व है, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम का महत्व है, ऐसे आत्मा के लिए मुरली का महत्व है. समझ रहे हो? कहते हैं ना सुना लेकिन समझा, सुन तो लिया समझा कहां समझा. इधर से उठते ही बस वहां इतनी बातें करेंगे, जल्दी है बहुत, पता नहीं कहां भाग के जाना है. आराम से जाओ, अभ्यास करो, 2 दिन ये भी तो प्रैक्टिस कर लो. ये भी जीवन कैसा होता है, ऐसा जीवन कैसा होता है. अब तक हम वैसे जीते रहे, अब कुछ अलग तरीके से जीना है. अलग पाने के लिए स्टाइल बदलना पड़ेगा ना, लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा ना. तो 1936 से जो मुरलिया चली 69 तक, उसको क्या कहेंगे? साकार मुरली. कौन सी मुरली? हाँ थोड़ा प्यार से बोलिए, महानात्माई बोलिए, और थोड़ा प्यार से एक दूसरे से बोलिए. आज हम डायमंड हॉल में बैठकर साकार मुरली सुनेंगे. बोलो, खुशी से बोल रहे हो? बातें तो बहुत करते हो, बार बस छोड़ने की देरी है, पहले उठ भी जाओगे. तो कहने का तात्पर्य क्या है? खुशी, भगवान प्यासे हैं अनेक जन्मों से. ये तो आप यहां बैठे हो पता नहीं चल रहा है, अनेक जन्मों से आपने तपस्या किया है तब यहां बैठने का भाग्य मिला है, इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली हो. यहां आने के बाद भी कई लोग बाहर है, क्यों? अभी भाग्य नहीं है, पुण्य नहीं है यहां बैठने का. यहां बैठने के बाद कहीं उठ जाते हैं, वो भी पुण्य चाहिए, उसके लिए भी, पूरा सुनने के लिए भी. भगवान किसी को फोर्स नहीं करता, मर्जी तुम्हारी, भगवान गाइड करता है. हे अर्जुन समझ जाओ सत्य क्या है, चाहो ना चाहो तुम्हारी मर्जी. आत्मा अपना ही मित्र है अपनी ही शत्रु है, चॉइस के अनुसार. तो इसीलिए ज्ञान मुरली बाबा ने 1936 से लेकर 69 तक चलाई जब बाबा साकार में थे. तो आपने सुना ना अनुभव, कैसे बाबा बैठे थे, सत्संग चल रहा था. वैसे बाबा का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा. 1936 में बाबा ज्वेलर थे, उस समय 60 इयर्स का आयु था, दानी स्वभाव के थे, धनी थे, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते थे, उनके 12 गुरु थे और बहुत प्रिय सबके बाबा थे. राजा महाराजाएं भी कहते थे बाबा आपको राजा बनना चाहिए, आप में तो सारी क्वालिटीज है, क्योंकि वो सात्मा ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो श्री नारायण बने, तो क्वालिटीज तो होगी ना। हमें भी पुरुषार्थ बाबा करा रहा है, तुम भी बन सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा के तन का धार लिया। उनका इतना अच्छा मैनर्स था, गुरु सामने बैठे हो कभी ना पहले से उठेंगे ना उनके जाने तक जाएंगे, नहीं या उनके आने के बाद आ रहे, नहीं मैनर्स नहीं है। बाबा में बहुत मैनर्स था, गुरु आ जाए उससे पहले बैठ जाते थे, वो जाए उसके बाद जाते। लेकिन जब बारवा सत्संग चल रहा था, बारवा गुरु उनके सामने बैठे थे, प्यास तो था बाबा को, सच क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, ढूंढते थे। तो उनको आंसर मिला कब, 1936 में, जब बाबा बैठे तो उनको ऐसा लगा मुझे उठना है। अब बाबा के पास एक प्रश्न आया, कैसे उठूं, सामने गुरु बैठे, लेकिन वो रहा नहीं गया बाबा से, बाबा उठ गए। ध्यान से सुनना, तो पीछे बैठे थे उनकी पत्नी, पांच बच्चे भी थे बाबा को, उनके पत्नी ने देखा बाबा तो उठ गए, ऐसे कैसे हो गया। पत्नी ने कहा बहू को, जाओ पीछे पीछे देखो बाबा कहाँ जा रहा है, कुछ चाहिए होगा, बाबा तो उठते नहीं है कभी। तो बाबा गए अपने कमरे में, कमरे में गए बाबा बैठे, और जैसे ही बैठे उस महाज्योति ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, पूरा कमरा लाइट 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 से भर गया, और तीन महावाक्य भगवान ने उच्चारित किए, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, सत चित निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बहू देखती रह गई, क्या हुआ, बाबा तो कभी ऐसी बातें करते नहीं है। पूरा कमरा लाइट 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 से भर गया, और ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं चला उनके जीवन में उनको क्या हो रहा है। जैसे ही शिव बाबा चले गए, महाज्योति उनके तन से निकल गई, तो उनको लगा क्या हुआ मेरे साथ। फिर उनको अनेकों साक्षात्कार हुए, कैसे इस दुनिया का विनाश होगा, कैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिरेंगे ताश के पत्तों के माफिक, धन होगा खाने के लिए अन्न नहीं होगा, और उनको साक्षात्कार कराया शिव बाबा ने, कैसे सत्युगी दुनिया आने वाली है और ये अंधकार खत्म होने वाला है, और मैं आ चुका हूं। शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया ब्रह्मा बाबा को, वो तो आपने सुना है, लेकिन लेकिन 1936 से लेकर 69 तक जो मुरलियां चली उसे साकार मुरली कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए सभी, क्या कहते हैं साकार मुरली में क्या है, चार बातें, चार सब्जेक्ट्स है साकार मुरली में। एक है ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा है राजयोग, तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा, चौथा है ईश्वरीय सेवा। ये चार सब्जेक्ट्स क्यों बताया बाबा ने, क्योंकि एजुकेशन बाबा मुरली के माध्यम से हमें देते हैं। एजुकेशन इज नॉट जस्ट डंपिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इज समथिंग वेयर यू एड्यूस द पोटेंशियल्स विद इन द सेल्फ, अंदर की क्षमताओं को बाहर लेकर आओ। तो ज्ञान मुरली के माध्यम से स्वयं परमात्मा ने एजुकेट किया, किस बात के लिए, कैसे तुम सदा शांति में सुखमय जीवन जी सकते हो, सदा शांति चाहते हो घर को मंदिर बनाना चाहते हो, चार सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो। जैसे मकान पर ध्यान देते हो, दुकान पर ध्यान देते हो, सब पर ध्यान है, लेकिन खुद पर ध्यान नहीं है। थोड़ा मन पर ध्यान दो। मन भी तो छोटा बच्चा है, उसको डांटते हो रहते हो, मेरा मन ही अच्छा नहीं है। अरे लेकिन तुम खुद ही भूल गए ना तुम कौन हो, तब तो मन तुम्हें चला रहा है, मन को तो पता ही नहीं है कहाँ जाना है, उसके ऊपर कोई अधिकारी बैठा ही नहीं है, वो जैसा चाहे वैसे चल रहा है और आपको चला रहा है। लेकिन ज्ञान मुरली के माध्यम से कैसे हम मन के राजा बने, मन बुद्धि संस्कार के मालिक, कर्मेंद्रियों के मालिक क्या बने हैं हम। आंख भी हमें चला रहा है, जीभ भी हमें चला रहा है। जैसे कहेंगे भाई शुगर है मत खाओ, लेकिन रसगुल्ला बहुत पसंद है, तीन के बदले चार खा लेंगे, कहेंगे टैबलेट ले लो। जीभ है, डेढ़ इंच का भी नहीं है, जीभ हमें चला रहा है। ये है वर्तमान समय की हमारी स्थिति। लेकिन इन चार सब्जेक्ट्स के माध्यम से भगवान ने जीवन जीने की कला सिखाई। कमल फूल समान जीवन बनाओ तुम्हारा, कमल कीचड़ में रहते भी कीचड़ से न्यारा है। इसी तरह संसार में रहो, कांटों के बीच में रहो, लेकिन गुलाब जैसा जीवन कैसे जिए वो ज्ञान मुरली के माध्यम से भगवान हमें सिखाते हैं। कांटा चुभे ना, ऐसा जीवन कैसे, क्या संभव है? है, है। क्योंकि भगवान ज्ञान मुरली के माध्यम से इधर उधर की बातें नहीं सुनाता है, तुम्हें सक्षम बनाता है। इसीलिए ज्ञान मुरली कहां सुनना है, सेंटर पर जाकर, ये लिखो अपने डायरी में। कहां सुनना है बोलिए सभी, कहां पर जाना है? भगवान का हम आत्माओं से प्यार है, इसीलिए हमारे लिए हमारे शहर में सेंटर खुला है। ये भगवान का प्यार है। कोरोना जैसा कोई बीमारी फिर से अगर आ जाएगी, बंद हो जाएगा दरवाजा, चाहो तो भी नहीं जा सकते, अब है सीजन जाने का। तो परमात्मा के घर का दरवाजा खुला है, क्यों जाना है सेंटर पर? कोई बहन अच्छी मुरली सुना रही है, सुन लो, सारे दिन में सुन लो, जितनी बहनों का आपको सुनना है सुन लो, लेकिन एक बार सेंटर पर जाना जरूरी है। क्यों, अब ये बताएं क्यों जाना सेंटर पर जरूरी है। अभी मात्र ज्ञान पर्याप्त नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, पता है ना गुस्सा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सब कुछ पता है, लेकिन पता है लेकिन छोड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि शक्ति नहीं है। क्या नहीं है बोलिए, बोलिए सभी, क्या नहीं है? ज्ञान है लेकिन शक्ति। जैसे दुर्योधन ने कहा महाभारत में, मुझे सब कुछ पता है लेकिन धर्म पर चलने की शक्ति नहीं है। हमें भी सब कुछ पता है लेकिन छोड़ने की शक्ति नहीं। वो शक्ति कहां से मिलेगी? जब तक ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो जाओगे, चाहे कितना क्लासेस सुन लो, आप सब कुछ आपको पता भी है क्या छोड़ना है, लेकिन छोड़ने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? पावर। वो पावर कहां से मिलेगा? शिव बाबा से मिलेगा। बैठो बाबा के सामने, बैठो, निकालो टाइम। जैसे हेल्थ का ध्यान रखते हो, निकालते हो, एक्सरसाइज करते हो, मुरली क्या है? आत्मा का भोजन। ज्ञान जल बाबा देता है, और आराम, आराम क्या है? योग में बैठना, मन को आराम मिलेगा। वैसे भी आप नींद कर लेते हो, यहां बैठे बैठे भी होता है ना, या तो अलर्ट हो जाओगे या तो सो जाओगे, दोनों में से एक चीज होगा, क्योंकि मन शांत हो जाता है, यह है प्रूफ। व्यायाम यानी चिंतन, तीन चीजें चाहिए, शरीर के लिए भी चाहिए तो आत्मा के लिए भी चाहिए। समझ गए? क्लियर? थोड़ा ऐसे कर दे, थोड़ा मुस्कुराते हुए, क्लियर हो गया ना? तीनों चीजें शरीर के लिए कर दे, तीनों चीजें अभी आत्मा के लिए भी करना है। तो 1936 से लेकर जो मुरलिया चली 69 तक, उसे साकार मुरली कहते हैं। अब सिंध हैदराबाद में बाबा आए, ब्रह्मा बाबा के तन में दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बने। तब तो अविभाजित भारत था, पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। तो बाबा भारत में आए, हैदराबाद से कराची गए। 1947 के बाद पार्टीशन हो गया, तो 50 में बाबा सिंध हैदराबाद कराची से इंडिया आ गए, भारत आ गए। 300 बच्चों को लेकर, मुरलियां लेकर 5 साल के बाबा। और ताली तो अपने लिए बजाओ, जिस देश में भगवान आता है वहां आपका जन्म हुआ। बाबा ने, परमात्मा ने समय प्रति समय धर्म स्थापकों को भेजा ताकि सुख शांति का जीवन कैसे जिए उन्होंने बताया। लेकिन जब तक परमात्मा नहीं आ जाता इस संसार में, तब तक पूरा अंधकार खत्म नहीं हो जाता। और ऐसे समय के लिए भगवान अभी हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, पुण्य जमा कर लो, आगे आने वाला समय बहुत भयानक है, तैयार हो जाओ। तो इन मुरलियों के माध्यम से, 5 साल की मुरलियां जो लेकर के आए, तो वही जो 5 साल की मुरलियां रिवाइज होती है, रिपीट होती है, जो आप सबके पास पहुंचता है हेडक्वार्टर्स से। तो 5 साल में रिवाइज होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता है रिवाइज हो रहा है, ऐसा लगता है आज सुन रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है ना, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, आने वाले जो भी प्रॉब्लम है पहले से सोल्यूशन भगवान ने दे दी है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। हमने सोचा अभी आज के आज मुरली में आंसर मिल गया। तो इसीलिए साकार मुरलियां चली है 1936 से लेकर 1950 तक। तो पहले के 5 साल की मुरलियां 69 तक चली, तो 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा, 50 में तो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में शिफ्ट हो गया। तो 5 साल की मुरलियां वही रिवाइज होती है लास्ट में जो बाबा ने चलाई है। तो इसको हम कहते हैं साकार मुरली, मंडे टू सैटरडे सेंटर्स पर चलती है। तो सेंटर पर जाकर क्यों सुनना है, वहां हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होता है, घर में लो फ्रीक्वेंसी होता है। इधर उधर की बातें करेंगे, ये करेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी, मंदिर में जाओगे उससे थोड़ा हाई वाइब्रेशन होगा। और सेंटर पर जाओगे, स्पेशली बाबा के कमरे में जाओगे, तो चार्जर है वहां पे, पावर हाउस है बाबा का कमरा आपके शहर के लिए, इसलिए रोज वहां जाना जरूरी है। आपका योग नहीं लग रहा है, योगियों के संग में बैठ जाइए, आपका योग भी लग जाएगा, परिवर्तन भी फास्ट आएगा। आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन फास्ट आए या स्लो आए, बोलो। किस किस को चाहिए परिवर्तन फास्ट, चाहते हैं तो रोज सेंटर जाओ, बाबा के कमरे में बैठो, प्रॉब्लम को लेके बैठो बाबा के सामने, डिस्कस करो भगवान के साथ, देखो आपको आंसर कैसे चुटकियों में मिलेगा। तो योगियों के संग में बैठकर मुरली सुनना है। महानात्माएं मंजूर, बोलिए क्लियर। तो आज से कौन कौन सेंटर पे जाएंगे, हाथ हिलाई हाथ। बाकी किसी बहन की मुरली अच्छी लगती है, लेकिन बहन थोड़ी सुना रही है, बाबा सुना रहा है, बाबा सुना रहा है हमें। कोई भगत नहीं बना रहा है बाबा, मालिक बना रहा है। तुम्हें किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें केवल फॉलो करना है, जीवन में धारण करना है। भक्ति का फल ही ज्ञान है। क्या है, भक्ति का फल है। भक्ति बहुत अच्छी है, तब तो ज्ञान मिला। हमने कई गुरुओं को फॉलो किया, जब तक भगवान नहीं आ जाता, यही गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने भारत को थमाया, उनका अपना महत्व है, लेकिन अब परमात्मा आ चुका है, कहता है बस धारण करो। तुम्हें क्या बनना है, मालिक बनना है, सक्षम बनना है, घर को मंदिर बनाना है, वो तुम्हारे हाथ में है। मात्र किसी का हाथ रख देने से, कोई आशीर्वाद से, आशीर्वाद लेनी है कैसे, कर्मों से, अच्छी भावनाओं से, अपने आप को आशीर्वाद देना है। तो साकार मुरली मंडे टू सैटरडे चलती है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स है। 69 के बाद अव्यक्त मुरलियां चली, बोलिए कौन सी मुरलियां चली? अव्यक्त मुद्रा। कहां चली? इस डायमंड हॉल में चली। बाप दादा दोनों, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा लाइट के शरीर में, फरिश्ते रूप में, वतन से बाबा इस हॉल में आए। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा भी आए, बाप दादा दोनों यहां आए, और हम सभी महान आत्माओं के लिए बाबा ने मुरली चलाई गुलजार दादी के तन में आकर, जिसे हम कहते हैं अव्यक्त मुरली। ऐसे हॉल में बैठकर आज मुरली सुनने का भाग्य मिला है, कितना आप ग्रेट है। लेकिन ऐसे बैठ के उठ जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियो में भी जिस फ्रिक्वेंसी में भी आप ट्यून करोगे ना, वही बजेगा चैनल, भले बहुत सारे चैनल्स हैं। इसी तरह यहां बातें करते रहोगे, कनेक्शन होगा नहीं। हाई फ्रिक्वेंसी है डायमंड हॉल में, लेकिन उसके लिए आप भी सक्षम बने, पात्र बने, तब तो कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल का नंबर ही अलग है तो क्या अनुभव होगा। लेकिन ज्ञान मुरली के माध्यम से भगवान ने हर बात का रहस्य स्पष्ट किया, और अव्यक्त मुरलियों ने बाबन ने योग और धारणा के विषय पर सुनाया है। कैसे हम अपने जीवन में सुखमय शांति में अगर रहना चाहते हैं तो क्या क्या करें। हाउ टू यूज द राइट पावर at the right time, at the right place, in the right way. सारी बातें ज्ञान मुरली में भगवान ने लाइट हाउस बनकर डायमेंशन दिखाई है। तो इसीलिए ये जो अव्यक्त मुरली है ये संडे के दिन चलता है। क्लियर हो गया? दो प्रकार की मुरलियां हैं, लेकिन अब मुरली सुनने की विधि क्या है। आज तो हम पूरा मुरली वैसे भी नहीं सुनाएंगे, लेकिन मुरली सुनने की विधि बताएंगे। खुश है? खुश है? हाथ हाथ तो हिलाइए, जरा मुस्कुराइए। तो मुरली सुनने की विधि, ध्यान से सुनना, वो है आत्म अभिमानी स्थिति। सभी बोलिए, कौन सी स्थिति? सभी बोलिए, बोलते तो बहुत अच्छे हो। बोलिए कौन सी स्थिति? आत्माभिमान स्थिति। जैसे सूर्यमुखी फ्लावर हमेशा सूर्य की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, इसी तरह हमें भी इस हॉल में कोई नहीं है, मैं और बाबा, बस हमारी पर्सनल मीटिंग हो रही है भगवान के साथ। इस भावना के साथ बैठना है और तैयार करना है 15 मिनट बाबा के कमरे में बैठकर अपने आप को। मुरली ऐसे ही बस जाके बैठ नहीं जाना, 15-20 मिनट पहले योग करना, योग में रहना है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं मुख से भी मौन में रहो, एनर्जी जाती है, वेस्ट होती है। इसलिए कैसे करना है वो हम थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी महान आत्माओं से अनुरोध है खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। अभी तो खड़े सब हो जाए, बीच में बैठने का मन करे तो बैठ सकते। अभी तो अब इस समय सब खड़े हो जाए। अब अपने मन को देखिए, देखना आता है? आंखें खोल कर रखिए या बंद करके रखिए, आपकी मर्जी। अब मन को देखिए, जैसे बिल्ली क्या करती है, चूहे को पकड़ लेती है, आप भी क्या करना, देखना शुरू करो मन को, बुद्धि को देखना। मन शांत हो जाएगा, क्योंकि मन कोई चीज नहीं है, ये सोचने की क्रिया है। आज आप अपने मन से बात करें, मन को समझाएं कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। हे मेरे मन, मैं तुम्हारा मालिक हूं। आज दिन तक मैं आपके गुलाम बनकर रही, लेकिन आबू में आकर, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर, स्वयं ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया, मैं समझ गई, बुद्धि में रोशनी आ गई, मेरा सद विवेक जाग उठा है। हे मेरे मन, मैं तुम्हारा राजा हूं। मैं रात को सोकर जब सुबह उठती हूं, जब आईने में अपना चेहरा देखती हूं, जो रूप नजर आता है मैंने सोचा यही मेरा नाम है, यही मेरा रूप है। लेकिन जरा सोचो, आज दिन तक मैंने दूसरों से बातें करने में बहुत समय वेस्ट किया है, आज से मैं तुमसे बात करूंगी, रोज तुमसे मिलूंगी, क्योंकि भगवान ने मुझे गाइड किया है। युद्ध क्षेत्र में कहा है, हे अर्जुन मैं आ चुका हूं तुम्हें गाइड करने। हे मेरे मन, ज्ञान मुरली के आधार पर स्वयं भगवान मुझे गाइड कर रहे हैं। रोज मैं सेंटर पर जाऊंगी, मुरली सुनूंगी और हे मेरे मन, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है, कहां जाना है। हे मेरे मन, जरा सोचो, जब मैं इस शरीर को छोड़ देती हूं, मेरे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले जिंदगी भर कहते रहे मुझे तुमसे बड़ा प्रेम है, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तो शरीर से ही तो प्यार किया। हे मेरे मन, जब मैं शरीर को छोड़ देती हूं, मेरे चाहने वाले परिवार के लोग इस शरीर को जला देते हैं एक दो घंटे में, मेरे पहने हुए जूते चप्पल घर में रख लेते हैं, मेरा फोटो रख लेते हैं, लेकिन मुझे जला देते हैं, यही तो हकीकत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हे मेरे मन, आज दिन तक मैंने अपना सारा समय शरीर को खिलाने पिलाने सुलाने, इसके लिए कमाने इसको घुमाने में बिता दिया, लेकिन भगवान ने सच्चा ज्ञान दिया, शरीर का भी ध्यान रखो साथ साथ मन का भी ध्यान रखो, इसलिए रोज हे मेरे मन मैं तुमसे मिलने आऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। जब तक मैं आत्मा शरीर में हूं तब तक शरीर का वैल्यू है, जैसे ही मैं निकल जाती हूं तो शरीर मुर्दा बन जाता है, ना आंखों से देख सकती हूँ, ना मुख से बोल सकती हूँ, ना कान से सुन सकती हूँ, ना हाथ पैर चला सकती हूँ। हे मेरे मन, इससे सिद्ध है ना, इन कर्म इंद्रियों को चलाने वाली मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, भगवान ने मुझे इतना शक्तियां दी है, सारे ही गुण मुझे दे रही है, लेकिन देहभान के कारण मैं देह अभिमान में रही। हे मेरे मन, अब मुझे कहीं भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट बन चुके हूं, जैसे नीले आसमान को यहां खड़े खड़े देख सकती हूं, मैं यहां खड़े खड़े आसमान के तारों को देख सकती हूं बुद्धि से। अब परमात्मा का ज्ञान मुझे मिला है, उनके सानिध्य में मैं हूं, तो मेरी बुद्धि में रोशनी आ गई है, दिव्य बुद्धि बन चुकी है। महसूस करें आत्मा की लाइट चेहरे के चारों तरफ फैल रहा है, शरीर के ऊपरी भाग से लेकर पैरों के तले तक मुझ आत्मा का लाइट प्रवाहित हो रहा है। स्थूल शरीर में रहते हुए भी मन बुद्धि से मैं प्रकाश में काया में खड़ी हूं। शरीर के आकार में अपने आप को लाइट बॉडी में देखें। मैं एनर्जी जब तक हूं, मैं लाइट जब तक इस शरीर में हूं, तब तक इस शरीर के वैल्यू, मैं निकल गई तो मुर्दा बन जाएगा शरीर। हे मेरे मन, मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं लाइट हूं। अपने आप को लाइट बॉडी में देखिए। अब धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन रहा है, ध्यान से सुन रहा है। अब धीरे धीरे मैं प्रकाश में काया में इस स्थूल शरीर से डिटैच होकर तैरते हुए ऊपर जा रहे हूं, जैसे हवा में गुब्बारे के माफिक उड़ रही हूं लाइट बॉडी में, सूर्य चांद तारागण से भी पार सूक्ष्म वतन में प्रवेश करती हूं। जहां स्वयं ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण तन में विराजमान है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं मुझे, मैं भी अपने प्रकाश में कायम है बाबा के समक्ष हूं। और जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण ब्रह्मा बाबा से मुझे दृष्टि मिल रही है सूक्ष्म वतन में, मैं प्रकाश में काया को छोड़कर मैं आत्मा बिंदु उड़ती 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 प्यार से परम धाम पहुंच गई, जहां चारों तरफ स्वर्णिम लाल प्रकाश है, जहां स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा के पिता विराजमान है। प्रेम का सागर अपनी प्रेम की किरणें फैला रहा है। इतना सुंदर मुलाकात मेरा सुप्रीम लाइट से हो रही है, जैसे बाप अपने बेटे से मिलता है गले लगाता है, जैसे माँ अपनी बेटी से मिलती है गले लगाती है, इस तरह परमात्मा की प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। उन प्यार की किरणों को मैं स्वीकार करती हूँ और बाबा से कहती हूँ, बाबा इन दो दिनों में आपने जो सुंदर ज्ञान दिया हमने बहनों के माध्यम से प्राप्त किया, आपके सुंदर ज्ञान की पालना के लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मीठे बाबा आपका दिल से शुक्रिया, आपने मेरी पालना मुरली से की है, इन दो दिनों में मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराया, जीवन जीने की कला सिखाई, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। मुझे प्यार दिया मेरी पालना की है बाबा, आपका कितना ना रहम है हमारे ऊपर, कितने तनावों में फंसे हुए थे, तनावों से कैसे मुक्त होना है ये कला आपने सिखाई है। इतना प्यार आपने मुझे इन तीन दिनों में दिया, मैंने सक्षम अपने आप को पाया और समझ गई मुझे सुख बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे इतना सक्षम बनाया कि तुम स्वयं ही सुख स्वरूप आत्मा हो, सुख ना साधनों में है ना वैभवों में है, सुख तुम्हारे ही गुण है, तुम सतोगुणी हो। प्यारे बाबा आपका किन शब्दों में मैं शुक्रिया अदा करूं, अब शांति मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, शांति के सागर बनकर आपने मुझे बताया शांति तुम्हारा ही स्वधर्म है, शांति ना जंगलों में है ना हिल स्टेशन पर है ना समंदर के किनारे पर है, तुम स्वयं ही शांति के निर्माता हो। हे परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आनंद बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना होटलों में ना पिक्चर देखने में आनंद है, तो स्वयं ही तुम आनंद स्वरूप आत्मा हो। हे परमात्मा किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं। महसूस करें बाबा के प्यार को, स्वीकार करें, अब बाबा का आह्वान करें, प्यारे बाबा आप चलिए मुझे मुरली सुनाने और देखो दिव्य बुद्धि से कैसे उस महाज्योति का अवतरण सूक्ष्म वतन में संपूर्ण बाबा के तन में हो रहा है। ध्यान से देखो, दिव्य बुद्धि से देखिए कैसे ब्रह्मा के संपूर्ण तन में स्वयं शिव बाबा बैठे। और बाप दादा वतन से साकार में डायमंड हॉल में आ रहे हैं। दिव्य बुद्धि से देखिए सामने बैठे हुए बहन के शरीर को न देख, स्वयं भगवान नीचे आ चुका है। ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण तन में शिव बाबा को दृष्टि दे रहे हैं। देखिए मैं महानात्मा इन कानों से भगवान की मुरली सुन रही हूं और दिव्य बुद्धि के नेत्र से स्वयं भगवान को देख रही हूं। और बाबा मुझ आत्मा से कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा। और मैं आत्मा बहुत भावना के साथ परमात्म प्यार को स्वीकार करती हूं। मेरे समक्ष स्वयं भगवान बैठा है। दिव्य बुद्धि से देखना है और मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से प्रकाशमय काया में अपने स्थूल शरीर में बैठी हूं, लेकिन हूं लाइट बॉडी में। बाबा के प्यार की दृष्टि को स्वीकार करें, प्यार को स्वीकार करें। अब सभी महान आत्माओं ने, मिठी आत्माओं ने भगवान के प्यार को स्वीकार किया। स्वयं भगवान मुझ आत्मा से कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा। स्वीकार करें और अब अपने शरीरों को बिठा दे। बोल दो, बोल दीजिए, शरीर पैर बिठा दो। हे पैर मुझे बिठा दो, बैठ जाए। जिसको अच्छी फीलिंग आई वो हाथ उठाए। अच्छी फीलिंग आई, थोड़े से थोड़ा सा फीलिंग आई ना, यह है प्रूफ। तो ऐसे अपने आप को तैयार करें, 15-20 मिनट बाबा के कमरे में बैठकर फिर बाबा का आह्वान करें। फिर हम अभी थोड़े समय में सीखेंगे कैसे मुरली सुनना है, कैसे समझना है और कैसे इसे धारण करना है। रेडी? क्योंकि पूरी मुरली अभी नहीं सुनाएंगे, सिर्फ कैसे सुनना है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। आत्म अभिमान स्थिति में बैठना है। बैठ जाए सभी सीधे, मुर्दे की तरह मत बैठना। मैं आत्मा लाइट, शरीर से अलग, लाइट बॉडी में। सीधे बैठ जाए, स्पाइन स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। कौन बात कर रहा है? स्वयं भगवान मुझ आत्मा से बात कर रहा है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कोई बहन भी नहीं है बीच में। 45 मिनट्स में मुरली पूरी हो जाती है। आपको आज जानना है कैसे मुरली सुनना है। पहली बात तो स्पष्ट हो गया कि आत्म अभिमान स्थिति में बैठकर शिव बाबा का आह्वान करना है। क्लियर? क्लियर हो गया। इसके लिए बाबा के कमरे में जाना है जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला है। आपके शहर में सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी सेंटर में बाबा का कमरा। इसलिए मुरली एक बार जरूर सेंटर पर सुनना है। क्लियर है? हाथ हिलाइए। कौन कौन जाएंगे? मर्जी आपकी है। नहीं टाइम है तो भगवान के पास भी कोई टाइम नहीं है। अपने आप को देखिए, ठीक है। तो अभी हम मुरली सुनेंगे, जस्ट हम सीखेंगे कैसे मुरली सुनना है। तो दो प्रकार की मुरलियां पहले भी बता दी मैंने आपको, एक है साकार मुरली और दूसरा है अव्यक्त मुरली। तो साकार मुरली में बाबा क्या कह रहा है, बाबा कह रहा है मीठे बच्चे, हम क्या कहेंगे दिल से, बोलिए मुस्कुराते हुए। एक तो खुशी से बैठना है, कौन मिल रहा है, भगवान मुझसे बात कर रहा है, नशे से खुशी से बैठना है, भावना से बैठना है। बाबा क्या कह रहे हैं, मेरा मीठा बच्चा। तो हम क्या कहेंगे दिल से, बोलिएगा मेरा मीठा बाबा, बोलिए सभी, और थोड़ा मिठास डालिए। हाँ बोलिए एक दूसरे को, मेरा बाबा बहुत मीठा है, बोलो मेरा बाप बहुत अच्छा है, अभी भी नशा नहीं चढ़ाए से मेरा बाप अच्छा है। दादी जानकी कहती थी मेरा बाप बहुत अच्छा है, नशा स्वीकार नहीं किया ना अब तक, इसलिए नहीं निकल रहा है। शरीर का बाप भी अच्छा है, आत्मा का बाप परमात्मा बहुत अच्छा, क्योंकि सातों ही गुण आपको वर्षे में दे दी भगवान ने, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम सतो गुणी हो, ना शांति ढूंढने की जरूरत है, ना प्यार ढूंढने की जरूरत है, ना आनंद ढूंढने की जरूरत है, तुम उसी के बने हुए हो। ऐसा प्यार कौन करेगा, अब तक तो पता ही नहीं था, हम सोच रहे थे बाहर से कहीं से कोई शॉप से मिलेगा, भगवान ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें वर्षे में दिए है, स्वीकार करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा बाप के साथ बहुत बहुत लव होना चाहिए, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। और आपका प्यार भगवान से हो गया, किस किस का हो गया, थोड़ा खुशी से हो गया, आप सबका बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। क्यों प्यार हुआ भगवान से, उसने हमें भटकने से छुड़ा दिया, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम अंदर काम करो, जैसे साइंटिस्ट अंदर लेबोरेटरी में काम करता है, इसी तरह तुम अंदर जाओ। राजयोग में 3 steps है, अंदर जाइए, ऊपर जाइए, फिर ऊपर से शक्ति लेके नीचे कर्म में आइए, कर्म योगी बनकर, 3 ही है। तो बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, बहुत बहुत लव होना चाहिए, सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग, बोलिए क्या कहेंगे, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। अब जो बाबा कह रहा है हम क्या कहेंगे, बाबा कह रहे हैं बहुत बहुत लव होना चाहिए, हम क्या कहेंगे, हाँ जी बाबा, बोलिए सभी प्यार से, हाँ जी बापू, हाँ जी डैडी, हाँ जी पिताजी, जो बोलना है बोलिएगा, दिल से ही तो बोलना है, आज थोड़ा मुख से बोल रहे हो। तो एक एक बाबा का महावाक्य कैसे सुनना है, एक तो प्यार से और दूसरा हाँ जी बाबा। क्यों ऐसा, अब घर में आपके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा कहता है अब जो भी कहेंगे ना, हाँ जी मम्मी, हाँ जी डैडी, अब दूसरा बच्चा है अरे बोल दो ना, वही तो बोलते रहते हो, और जाओ वही वही बोलते रहते हो, इसलिए आजकल लोग माँ बाप से बात नहीं करते, मोबाइल लेके बैठ जाते, बोल दो बोल के चले जाओ। तीसरा बच्चा है, आप तो बोल रहे हो लेकिन वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है वो भी पता नहीं है, ऐसे है ना, होता है ना, 3 बच्चे अलग अलग टाइप के हैं, आपका किससे ज्यादा प्यार होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बोलिए किस किस का फर्स्ट से होगा, थोड़ा मुस्कुराते हुए हैं, या किस किस का सेकेंड से होगा, नहीं कोई नहीं, किस किस का थर्ड से होगा, लेकिन आप कौन से बच्चे बनेंगे मुरली सुनते सुनते, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन कौन फर्स्ट बनेंगे, दोनों हाथ उठाना, पक्का पक्का, आपने लिए ताली बजा दे। तो विधि विधि सीख लिया आपने, एक एक महावाक्य सुनते, हाँ जी बाबा, शुक्रिया आपका बाबा, प्यार से एक तो समझना है, एक है सुनना, दूसरा है समझना, तीसरा है स्वीकार करना, स्वीकार ही नहीं करते, अब बाबा कह रहे हैं तुमसे हाँ मैं बहुत प्यार करता हूं। अब हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मन आपका फोल्डर खोल रहा है, कहां प्यार करते हैं, मेरे जीवन में तो सब मुझे नफरत करते हैं, मन चला रहा है आपको। आप क्या करेंगे, चुप हो जाओ, अभी मुझे भगवान का प्यार मिल रहा है, तो मन को आप सिखाए, क्लियर है। अब आप क्या आपको करना क्या है, मन बुद्धि को रास्ता दिखाना है, लेकिन अगर आपने रास्ता नहीं दिखाया तो मन अपना चलाएगा। आपको मन का राजा बनना है या मन के गुलाम बनना है, बोलिए, मन का राजा या मन के गुलाम। राजा बनना तो क्या करना, उसको मन रूपी बेटे को सिखाओ तो सही। अब एक बच्चे को चलने में टाइम तो लगेगा ना, गिरेगा उठेगा गिरेगा उठेगा, बाद में चलना शुरू करेगा, मन भी तो बच्चा है, वो भी गिरेगा गिराएगा, दूसरा पता नहीं कौन कौन सा फोल्डर लेकर आएगा, लेकिन आपको मन को सिखाना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो लेकिन अब इसमें दो ऑप्शन है, बाबा क्या कह रहे हैं, प्यार से अब इस पे विचार सागर मंथन करना है। क्या करना है, बाबा के हर एक महावाक्य का हमें क्या करना है, बोलिएगा महान आत्माएं, विचार सागर मंथन। बोलिए क्या करना है, आता है ना, आता है ना, किस किस को आता है, आता है, बाकी को नहीं आता है। मंथन माना इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, वो क्या कर रही है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, कितनी सारी बातें हैं, ये सारा ही चिंतन ही है। लेकिन स्थूल बातों का चिंतन करोगे, व्यवहारिक बातों का चिंतन करोगे, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी, यूज कर रहे हो। लेकिन परमात्मा चिंतन करोगे, आत्म चिंतन करोगे, मुरली चिंतन करोगे, तो गारंटी है सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। सभी चिंता या तो होगी चिंतन या तो होगी चिंता, चॉइस आपका। आपने याद, देखो बुद्धि सबके पास है ना, है या नहीं है बुद्धि सबके पास, हाथ उठाए जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो हाथ उठाए, सबके पास है, छोटी बच्ची के पास भी है। माँ ले जाती अपनी बच्ची को, कहती है चल तुम बहुत चॉकलेट खाती हो, चॉकलेट दान में दे दो। 5 मिनट के बाद बेटी कहती है ठीक है आपको चॉकलेट से टेंशन होता है, मुझे तो पढ़ाई से टेंशन होता है, पढ़ाई दान में दे दूं। बुद्धि है ना सबके पास, उसको चलाना है, कोई भी चीज उसको यूज करना है। नहीं यूज करोगे, बड़ी सी मशीन भी क्या हो जाएगा, रस्ट पकड़ लेगा, जंक पकड़ लेगा। इसी तरह बुद्धि को किन बातों में चलाना है, भगवान ने मुरली में क्या कहा, मेरे पप्पा ने मुझे क्या बताया मुरली में, ये चिंतन करोगे तो क्या होगा, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगा। समझो, कई लोग कहते हैं सब कुछ बाबा ही बता देना, तो हम उनको पूछते हैं, अब आप दुनिया में भी देख लो, अपने बच्चों को सब कुछ आप ही उसको सिखाते रहो, बच्चा ही सुन लेगा, बड़ा होगा क्या करेगा, क्या बोलेगा, मम्मी आप ही सब कुछ बता दोगे तो मैं क्या करूंगा, तो तुम ही सब कुछ बोल दो, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, तुम जो बोलो बस उतना ही करना है, मेरे बुद्धि का प्रयोग मैं कहां करूं। इसलिए बुद्धि सबके पास है या नहीं है, आप सब कुछ सिखा दोगे फिर भी बच्चा क्या बोलेगा, प्लीज छोड़ दो ना, मेरे पास बुद्धि है, मैं सोच सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। आप चाहते हो डॉक्टर बन जाए, उसको बनना है फोटोग्राफर, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं, इसलिए दुनिया में टेंशन है। तो बुद्धि सबके पास है, लेकिन आप मुरली के चिंतन में लगाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे होगा ना। अभी ये हाथ है, ABCD लिखना आपने हाथ को सिखाया है ना, हाथ में बुद्धि है, हाथ में बुद्धि। AB सीखने में टाइम लगा या सीख गए, 1 साल लगा ना नर्सरी, तो ये तो अभी आप सीख रहे हैं, तो करते जाइए। सबसे पहले रोटी बनाना शुरू किया तो सीधे सीधे गोल गोल बनाना शुरू कर दिया क्या, नहीं, धीरे धीरे अभ्यास, धीरे धीरे जागृति ही आत्मा में आई। तो बाबा के एक एक महावाक्य का हमें क्या करना है, चिंतन करना है। तो बाबा पूछते हैं मुरली में प्रश्न, अच्छे बच्चे बताओ एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणा होनी चाहिए। एक्यूरेट याद करना चाहते हो ना, क्योंकि शक्ति तो याद से मिलेगी, है ना। शक्ति कहां से मिलेगी, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से, परमात्मा को याद करने से। तो बाबा पूछ रहे हैं, अच्छा बच्चे बताओ, मुरली में क्वेश्चन होता है, एक्यूरेट याद के लिए धारणाएं कौन सी चाहिए और एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या है। तो आप अपने बुद्धि में आंसर लेकर आइए, फिर चेक करिए मुरली में वही आंसर है या दूसरा है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, एक्यूरेट याद के लिए क्या क्या चाहिए, धैर्यता, गंभीरता और समझ। अब इस पे चिंतन करो, क्या क्या होना चाहिए, धैर्यता, धीरज, फिर गंभीरता, फिर समझ, क्षमा भाव, ये सब कुछ चाहिए। ये तो पत्ते हैं, लेकिन पानी कहाँ डालते हैं, पत्ते पत्ते में डालते हैं या जड़ों में डालते हैं, जड़ों में। अपने आप सारे गुण आते जाएंगे, निखरते जाएंगे, उसके लिए आत्म अभिमान स्थिति में बैठना है। मन शांत होगा तो तुरंत आपको पता चलेगा मुझे इस शक्ति का प्रयोग करना है, इसका नहीं। अब आपको दो तीन दिन में क्या समझ आ गया, सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं, घर को मंदिर बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, बाबा ने कहा पूज्य बनो, बस इतना बता दिया बाबा ने। मैं सारा दिन क्या करना है, पूज्य क्यों, कौन बनेगा, जिसके अंदर दैवी गुण होगा वही पूज्य बनेगा। अब इन गुणों सामने, गुणों का कनेक्शन क्या है मेरे लाइफ के साथ, क्या है मेरे लाइफ के साथ। एक माता आई तो वो ये ऐसे बैठी थी, उस समय बाबा ने मुरली में क्रोध मुक्त वर्ष के बारे में बाबा ने बताया था, तो हम वही समझा रहे थे, सेंटर पर गए थे प्रोग्राम में, हम उनको वही समझा रहे थे। तो प्रोग्राम पूरा हुआ, एक माता जी हमारे पास आए और मेरे को कहती है, देखो दीदी अब आपकी सारी बातें सही है, लेकिन घर में मेरे तीन बहुएं हैं, तीन बेटे हैं, है ना, मुझे अपना थोड़ा चेहरा ना रोब का रखना पड़ता है, थोड़ा मुझे, मतलब मैं सांस हूं ना, तो मेरा थोड़ा चेहरा मुझे ऐसा रखना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है भले रखो, लेकिन थोड़ी सी बीपी बढ़ेगी चलेगा, थोड़ा रखोगे थोड़ा बढ़ेगा, नहीं 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 ये तो नहीं चलेगा, लेकिन आप मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला दे दो, बाबा ने जो मुरली में सिखाई है तो आप बता दीजिए कौन सी बात। तो उस दिन मुरली में था होली हंस बनो बच्चे, क्या था मुरली में बोलिए सभी, क्या था मुरली में, होली, मुस्कुराते हुए बोलिएगा, क्या बोल रहे बाबा, होली हंस। तो मैंने उसको कहा ऐसा है माता जी, आप घर जाओ तीन दिन के लिए, जब भी आपकी बहुए कुछ अच्छा काम करे तो क्या कहना, बहू बहुत अच्छी, मुस्कुराते हुए कहना, क्योंकि होली हंस माना गुण देखना। अब उसने कुछ किया है तो हमें भी क्या करना है, हमें भी कहना है ना मुस्कुराते हुए, शुक्रिया बहू आपका, है या नहीं है, बहुत अच्छी हो, बस तीन दिन ये करो। तो माता ने पक्का करा लिया, अब मेरा राज्य तो चलेगा ना घर में, तीन बहू है तीन बेटे हैं, वो मुझे चलाना शुरू कर देंगी अगर मैं ऐसे थोड़ा सा रैम नरम हो जाऊंगी तो, नहीं नहीं चलेगा कोई बात नहीं, जाओ ये भगवान के माँ वाक्य है ना, तो इसलिए तुम चिंतन करो, क्या करो, जब भी आपकी बहुए या बेटे कुछ अच्छा काम करे तुम्हें क्या कहना है मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छे, क्या कहना है, बहू तुम बहुत अच्छे, क्या कहना है, बहू मत बोलना आप, आपकी बहू तो नहीं है ना, तो उसको माता को सिखाया मैंने भाई बहुत अच्छे बस इतना बोलो। तो माता जी घर गई और तीन दिन तक उसको करना था क्योंकि हमने बताया था, तो पहला दिन उसने शुरू किया, तो माता बहू को कहती थी ले आओ पानी, कुछ भी जो भी बहू लेकर आती थी करती थी, तो फिर उसे क्या कहना था, बहू बहुत अच्छी। तो सारा दिन बहुओं ने सुना, आज तो माता जी पता नहीं क्या कह रही है, सारा दिन मुस्कुराते हुए कह रही है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो रात को बेटे आए उनको भी बता दिया बहू ने, आज तो माता जी की तबीयत बोलिए खराब है या अच्छा है? देखो खराब है, नहीं अच्छा है। चलो सबने बोला चलो चेक करते हैं, माता जी को पूछ ही लेते हैं। तो सब तीनों के तीन गए उधर बेटों के साथ साथ। माता जी सो गई तो माता जी को उठाया, बोला माता जी एक बात बता दो, ये क्या बात है? आप सारा दिन जब भी हम अच्छा काम करते हैं आप कहते हैं बहुत अच्छे हो, वो भी मुस्कुराते हुए, आपका तबीयत ठीक है? तो माता ने कहा बहुत अच्छा, हर बात में बहुत अच्छा। अरे वो गीता दीदी मधुबन से ना संदेश लेकर आई है बाबा का, होली हंस बनना है, तो इसीलिए 3 दिन के लिए मुझे करना है, बता दिया 3 दिन। तो जब बता दिया तो फिर बहू ने बेटों ने सोचा मात्र 3 दिन ही ऐसे रहोगे? तो कहते हैं बस कौन सी दीदी है, चलो हम दीदी से मिलते हैं। तो बोला ठीक है चलो, दीदी है सेंटर पर आए हैं 3 दिन के लिए। तो सब सेंटर पर आ गए और फिर 8 बजे उनको बोला 9 बजे आना, 8 बजे सब पहुंच गए। तो मैंने सोचा माता ने एक्टिंग तो नहीं कर लिया, तो पता नहीं क्या किया, तो सबके सब आ गए। तो फिर मैंने बोला ठीक है बिठाओ सबको, तो सब बैठे खुशी से बैठे थे। तो फिर मैं गई, मैंने बोला सब कैसे हो? अरे दीदी 2-3 दिन से तो बहुत अच्छे हैं हम। मैंने बोला माता को सिखाया थे तो पूरी फैमिली बोल रही है। तो फिर मैंने बोला अच्छा कैसे आना हुआ? दीदी आपने ना हमारी माता जी को 3 दिन का प्रोग्राम दिया है, अगर आप लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम दोगे ना, अगर ये माता जी ऐसे ही रहोगी ना, तो फिर हमारा घर तो स्वर्ग बन जाएगा, आप बोलो देंगे प्रोग्राम? तो मैंने पूछा माता जी करोगे? हाँ जी मेरा राज्य तो बहुत अच्छा चल रहा है, आज से मैं यही फॉलो करूंगी। तो सब ने कोर्स किया, बहुओं ने बेटे ने, और रेगुलर स्टूडेंट बन गया और घर उनका स्वर्ग बन गया। तो कैसे बना, कैसे बना? गुणों के कारण से बना, ना कि टीवी मोटर फ्रिज मकान दुकान से बना। कैसे बना? घर को मंदिर बनाना है, देवता बनना माना श्रृंगार करके खड़े नहीं हो जाना। गुणों से, एक एक गुण आपके अंदर आता जाएगा तो आपका घर क्या बनेगा? स्वर्ग बनता जाए। ये किसी को पता ही नहीं है, भगवान ने आके बताया। तुम कोई विदेश जाते हो तो पार्टी देते हो, कभी किसी ने कोई गुण सीख लिया तो कभी पार्टी दिया? क्योंकि हमें पता ही नहीं है गुणों से स्वर्ग बनेगा। तो परमात्मा ने राजयोग के माध्यम से हमें सच बतलाया, गुणों का, शक्तियों का प्रयोग, सही समय पर सही शक्ति का प्रयोग करोगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग बनेगा। पूज्य बनने का मतलब इतना है, ये चिंतन है, समझ गए कैसे चिंतन करना? क्लियर है? क्लियर है। तो अभी हमें भगवान से क्या करना है? संबंध जोड़ना है। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे बाप की करंट लेनी हो तो इस धारणा से जो याद करते, याद से याद मिलती है और बाप से करंट मिलती है। बाबा से शक्ति कब मिलेगी? जब संबंध जोड़ेंगे। और करना क्या है योग में? बातें करना है। बातें करना आता है? किस किस को आता है बातें करना? आप जो हाथ नहीं उठा रहे उनको बातें करना नहीं आता है? हाथ तो ऐसे हिला दो जरा, हाथ आता है ना बात करना? समझो फ्लाइट में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, सबसे बात तो करते रहते हो ना। हम वैटिकन गए यूरोप में, तो उस समय क्या हुआ कि हम पोप से मिलने वाले थे, तो हमें कहा 10 मिनट बैठ जाओ। पोप ने प्रेयर शुरू कर दी और एक बच्चा आकर खड़ा हो गया, वो भी कुछ कुछ बड़बड़ा रहा है। आजकल के बच्चे तो कितने मतलब एक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं। तो फिर पोप को ऐसा लगा चलो मैं इस बच्चे से पूछ लेता हूँ क्या कर रहा था 10 मिनट तक, है ना, तो हमको बाद में वो मिले। लेकिन उन्होंने बच्चे से पूछा तुम क्या कर रहे थे? तो बच्चे ने प्यार से इनोसेंट होकर के कहा मैं प्रेयर कर रहा था। तो अच्छा बताओ प्रेयर में क्या बोल रहे थे? तो बच्चे ने पूछा आप बताओ आप क्या कर रहे थे? मैं भी प्रेयर कर रहा था, मैं भी प्रेयर बोल रहा था, देखो इस बाइबल में जो लिखा है ना वो मैं पढ़ा रहा था। तो तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे 10 मिनट तक? तो प्यार से बच्चे ने कहा मैं तो ABCDZ तक 10 मिनट बोल रहा था। तो पोप ने कहा ये कोई चीज है बोलने की चीज है ABCD? तो प्यार से बच्चे ने जवाब दिया उसमें क्या है, आप ABCD को जोड़कर शब्द बनाकर प्रेयर बनाकर, गीत बनाकर, पैराग्राफ बनाकर बोल रहे थे। मैंने भगवान से कह दिया तुम्हें जो बोलना है, जो समझना है, जो शब्द बनाना है, जो सेंटेंस बनाना है, जो पैराग्राफ बनाना है तुम ही बना लो, मैं तो एबीसीडी बोल देता हूं आपके आगे। तो भगवान किसे प्यार करेगा, बच्चे को या पोप को? दोनों को प्यार मिलेगा। ज्यादा प्यार किसे मिलेगा, किसको मिलेगा? बच्चे को। तो योग में बैठकर दिल की हर बात उसे कहनी है, चलते फिरते भी उसे साथ लेकर चलो। कोई स्ट्रांग व्यक्ति हमारे साथ होगा तो हमें कभी डर लगेगा, क्योंकि स्ट्रांग व्यक्ति है मेरे साथ, अट्ठा कट्टा चल रहा है, बॉडी बिल्डर मेरे साथ, तो कोई चिंता नहीं। इस तरह मेरा साथी कौन? स्वयं भगवान मेरा साथी है, तो मुझे क्या डर लगेगा आंधी तूफानों से? हर काम उसके साथ करिएगा। चाय पीना है, बाबा को कहिए चलिए बाबा साथ में चलते हैं, चाय पीते हैं। हर कर्म जब हम उनके साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा उद्धार होगा, हमारी आत्मा की एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ गए? क्लियर हो गया? तो हमें क्या करना है योग में बैठ के? दिल की हर बात कहना है। भाई आत्मा समझना मुश्किल हो रहा है तो बातें तो कर लो, वो तो इजी है या नहीं है? इजी है ना? मुश्किल है या इजी है? इजी है। ठीक है, आगे बढ़े। तो एक एक महावाक्य का हमें क्या करना है? चिंतन करना है, मंथन करना है। एक 45 मिनट्स में मुरली पूरी हो जाती है, लेकिन हमें क्या करना है? सारा दिन होमवर्क करना है। समझ गए? इसलिए पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, भगवान की मुरली पर काम करना है, अंदर भगवान के प्यार को स्वीकार करना है। ठीक है, बाबा क्या कह रहे बच्चे? तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है, इसलिए शांति धाम से यहां आकर टॉकी बन जाते हो, इसलिए टॉक टॉक करते रहते हो। देखो कितना अच्छा बाबा बात करते हैं, है ना? लास्ट में बाबा क्या कहते हैं बच्चे? बहुत ऊंची पढ़ाई है, वजन करो इस पढ़ाई का। इस पढ़ाई का बाबा ने आपको सहारा दिया है। समझ में आ गया? क्या है पढ़ाई? सहारा है, सपोर्ट सिस्टम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब क्या कहेंगे? रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। ठीक है, धारणा में दो पॉइंट्स होते हैं, सारी मुरली में से चुना जाता है दो पॉइंट। तो बाबा क्या कह रहे बच्चे? झोली भरकर दान करो। क्या कह रहे बाबा? झोली भरकर दान करो। यहां पर ध्यान से सुनना, जो चाहिए उसे देना होगा, जो दोगे वही मिलेगा, याद रखो। अब आपको क्या चाहिए? शांति चाहिए, शांति दो, फिर आपको शांति मिलेगी। शांति चाहिए, योग में बैठे हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, सारा दिन अशांति की बातें करते रहते हो, तो कभी वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। जो भी चाहिए मनसा वाचा कर्मणा, वो आपको देना है। बाबा को हर संबंध से याद करना है। देखो, एक माता ने बाबा को अपना बेटा बनाया, शिव बेटा बनाया, तो बेटे के लिए जो भी लेकर आती थी ना, वो बाबा के घर के लिए भी ले आती थी। तन से, मन से, धन से सेवा करती थी माता जी, और रोज अमृत वेला पक्का करती थी। अमृत वेला का टाइम किसने दिया है? स्वयं भगवान ने दिया। किसने दिया है बोलिए? अमृत वेला करोगे तो भगवान से दोस्ती हो जाएगी। कौन कौन करेंगे आज से? पावरफुल अमृत वेला करना, ऐसे नहीं मजबूरी से, नहीं मोहब्बत से। टाइम पे सो जाओ, टाइम पर उठ जाओ। तो कहने का तात्पर्य क्या है? माता जी अमृत वेला पावरफुल करती थी, रोज सेंटर पे जाकर फर्स्ट सीट में माता बैठती थी। कितने साल की? 70 साल की माता फर्स्ट सीट पर। इतना नशा और इतनी शक्तिशाली स्थिति थी उसकी। उसका पोता आने वाला था विदेश से, तो उसने चाबी, मुरली का टाइम था, तो उसने चाबी दे दी अपने बाजू के घर में और कहा कि भाई मेरा पोता आएगा विदेश से, आप चाबी दे देना, मैं मुरली सुन के आ जाऊंगी।
पोता आ रहा है इतना दूर से, और माता जी को, माता जी ने कहा मेरा बेटा मुरली सुनाएगा तो मैं जाऊंगी वहां पहले, बाद में पोते को मिलूंगी। देखो तो कितना नशा आई, और जैसे आके पूरा हो गया और गई, जब गई उसके घर के पास एम्बुलेंस था, उसके पोते का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन माता की स्थिति इतनी शक्तिशाली थी, रोई नहीं और किसी को रोने नहीं दिया, आप रोओगे मेरे पोते को दुख होगा, रोना नहीं, बैठो सब शांति का दान दो। सेंटर वालों को बुलाया, उनको भी योग का वो कराया, प्रेयर किया, और फिर सबको बुलाया, ब्रह्मा भोजन कराया, 7 दिन का कोर्स कर लिया, करा भी दिया। इतनी शक्तिशाली स्थिति बना दी, रोज ज्ञान योग करोगे हर परिस्थिति को सामना करने की शक्ति मिल जाएगी। हमारी जो दादी जानकी थी 104 बरस की थी, कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, तो विश्व का प्रथम एकाग्र महिला वो बन गई। उसका हार्ट भी कमजोर था लेकिन विल पावर से, डॉक्टर भी कहता था पता नहीं इसका हार्ट कैसे चलता है, प्रकृति जीत बन जाओगे, नियम पर चलो, विधि से सिद्धि मिलेगी, समझ गए। तो बाबा ने धारणा के लिए 2 पॉइंट सुना दिया, फिर वरदान। क्या सुनेंगे अभी हम सभी? वरदान। सभी सीधे बैठ जाएं, जो भी महान आत्माएं डायमंड हॉल में बैठी हैं, मैं आत्मा ब्रुकुटी के मध्य में चमक रही हूं, अपने आप को लाइट के शरीर में देखें, स्थूल शरीर के आकार में लाइट का शरीर, साक्षी हो जाओ, शरीर से डिटैच हो जाओ, लाइट बॉडी से, स्थूल शरीर से निकलकर साक्षी होकर स्टेज पर चलकर लाइट बॉडी के पास, लाइट बॉडी से आना और देखना सामने बहन नहीं है, स्वयं ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण तन में विराजमान है, उनके ब्रुकुटी में शिव बाबा चमक रहे, प्यार का सागर, और वो आपको प्यार से देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की ललाट चमक रही है प्यार से, प्यार के सागर से, प्यार से बाबा आपको देख रहा है। उन्होंने अपना वरदानी हस्त आपके सर पर रखा है, महसूस करें बाबा स्वयं आपको वरदान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं मेरा मीठा बच्चा, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव, वरदान को प्यार से स्वीकार करें और बाबा से प्रॉमिस करें, इस कर्म क्षेत्र पर डबल लाइट स्वरूप में कर्म योगी बनकर मैं अपना पार्ट बजाऊंगी बाबा। वरदान लेकर चलकर फिर से लाइट बॉडी में, फिर से अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर, सीधे बैठ जाए, बिना शरीर के बैठ जाए, जस्ट मैं लाइट, अशरीरी आत्मा, डबल लाइट। सुप्रीम लाइट और मैं आत्मा लाइट, दो ही लाइट्स हैं। डायमंड हॉल में केवल 2 डायमंड्स हम चमक रहे हैं, मैं आत्मा लाइट और सुप्रीम लाइट शिव बाबा। तो अच्छी फीलिंग आई, आई वरदान को ऐसा स्वीकार करना है, ऐसे वरदान नहीं सुना, हाथ रखने की जरूरत भी नहीं है, समझ, दिव्य बुद्धि से काम करना है। तो बाबा क्या कह रहे, स्लोगन, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है ना बच्चे, इससे जीवन शक्तिशाली बनता है, मक्खन खाने से शक्ति मिलती है शरीर को, मन को भी कैसे मिलेगी, मनन करने से, मन को परमात्मा के दिव्य वाक्यों में बिजी रखना है, मनन करना है। करेंगे सारा दिन बिजी रहोगे तो कभी भी कोई अटैक नहीं होगी, परिस्थिति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्लियर है ना। तो अभी अव्यक्त मुरलियां दो लाइन सुनते हैं फिर पूरा करते हैं, ठीक है। अव्यक्त मुरलियां कब चलाई गई, पहले भी बताया, 69 के बाद गुलजार दादी के तन में, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे और दोनों गुलजार दादी के तन में आते थे, और यहां भी बहुत बार अव्यक्त मुरलियां चली है। तब दो लाइन सुन के पूरा करते हैं। बाबा कहते बच्चे स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो, लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो। क्या कह रहे बाबा, स्वमान में रहो, सम्मान दो, लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो। अब सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। अब हमने सुन लिया, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आमने सामने हो जाओ। अब मैं लाइट आत्मा इन आंखों से लाइट को देख रहे हो, देखिए लाइट को, मुर्दे की तरह नहीं खड़े रहना है, आमने सामने हो जाना है, लाइट बॉडी में खुद खड़े रहो और दूसरों को लाइट बॉडी में देखे। मैं आत्मा जब तक हूं तब तक शरीर की वैल्यू है, आज से मुझे शरीरों को नहीं देखना है, मैं लाइट हाउस को देख रहे हूं। एक दूसरे को शक्तियों का वरदान दो, शुभ भावनाओं का वरदान दो, परिवार के एक एक सदस्य को लेकर आओ, माफ कर दो, उनकी विशेषता देखो, जिसको आपने दुख दिया उसको भी लाइट दो, क्षमा का लाइट, जिन्होंने आपको दुख दिया उनसे क्षमा का लाइट लो। सबको थैंक्स दो, सारे यूनिवर्स को, आपके पास जो भी प्राप्तियां भगवान ने कराई उसके लाइट दो। तो लाइट हाउस में खड़ी हूं, लाइट हाउस को देख रही हूं। अब सामने की ओर शरीरों को मुड़े, पैर को कह दे पैर टर्न हो जाओ। अब दोनों हाथ आगे करें, मैं दोनों हाथों को आगे कर रही हूं, मैं लाइट इन हाथों को मूव कर रही हूं, मैं इन हाथों से अलग हूं। मन से बात करना है, इसको हिलाने की भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हाथों को ऊपर करें, मैं आत्मा इन हाथों को ऊपर कर रही हूं, हाथ ऊपर हो जाओ। जैसे हम दूसरों से बात करते हैं ऐसे हाथों से बात करो, ये हाथ ऊपर हो जाओ, फिर हाथों को कोई दो हाथ नीचे हो जाओ, मैं आत्मा लाइट तुम्हें बता रही हूं, और दोनों हाथ नीचे करो, क्यों मैं आत्मा दोनों हाथों को नीचे कर रही हूं, और मैं मर जाऊंगी इन हाथों को कह भी नहीं सकते, हाथ उठेगी उठेंगे भी नहीं, ये है विचार सागर मंथन। मैं लाइट हाउस हूं, मन को बताना है मैं लाइट हूं, सुप्रीम लाइट मेरे साथ है, उसका सपोर्ट है मुझे, चलते फिरते उठते बैठते लाइट हाउस में चलना है, माइट हाउस में चलना है। कौन कौन प्रैक्टिस करेंगे, तो बातें करने का टाइम कहाँ है, अंदर बात करना है, मन बुद्धि को ट्रेन करना है, इन आंखों से देखने वाली मैं आत्मा हूं, ये मेरे मन, मैं निकल गई तो आंखें कैसे देखेंगी, ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर इंटेलेक्ट। अब अपने शरीरों को बोलो, पैरों को कह दो बिठा दो मुझे, बैठ जाओ। तो उठना बैठना देहबान में नहीं, क्लियर है। परमात्मा कहते मैं तो पावरफुल हूं, लेकिन तुम भी पावरफुल हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे स्वीकार करना है, ठीक है, तो दो लाइन सुनते हैं फिर खत्म करते हैं। बाबा कहते बच्चे लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो। कभी गुस्सा मत करना, जब गुस्सा करते हो लाल पीले हो जाते हो, जब लाल पीले हो जाते हो तो कार्टून लगते हो। तो बच्चे कभी कार्टून मत बनना, मस्तक के बीच मैं आत्मा विराजमान हूं। और सबको कहां देखना है, हाथ लगाए कहां देखना है, शरीरों को, सांप को नहीं देखना है, शरीर रूपी सांप को नहीं देखना है, मस्तक मणि बनकर मस्तक मणि को देखना है, शुभ भावना के साथ देखना है, परमात्मा का लाइट लेना है और लाइट देना है। क्लियर है, क्लियर है क्या करना है? तो नई जिंदगी के लिए नई शुरुआत, नया उमंग, नया उत्साह, नई विधि कौन सी हुई? सुबह 4 बजे उठना है। उठेंगे, पावरफुल अमृत वेला करेंगे, हाथ हिलाइए। और क्या करना है? मुरली सेंटर पर जाकर सुनना है, 15 मिनट चार्ज करना है बाबा के कमरे में, बाद में मुरली में जाना है। करेंगे, हाथ उठाइए, कौन कौन करेंगे? तीसरी बात क्या सीखा? हर घंटे में 5 मिनट 10 मिनट चार्ज करना है। 5 पॉइंट अभ्यास करो, वरदान रिवाइज करो, बाबा को अपने दिल में बुलाओ। अभी ट्राई करो, सीधे बैठ जाएं, बाबा को बोलो आ जाओ बाबा मेरे दिल में बैठ जाओ, जिसे हनुमान के दिल में राम, मेरे दिल में दिलाराम भगवान बैठा है। हर घंटे में 5 मिनट बाबा को आह्वान करो, ठीक है? करेंगे, 5 मिनट करना, फिर उसके बाद शाम को 6:30 से 7:30 योग करना है। करेंगे सभी समय पर, और रात को मुरली पढ़ के योग करके सोना है। विधि समझ गए ना? राइट हैंड आगे करें, बाबा के हाथों में हाथ रखें। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस विधि के साथ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज से मैं पावरफुल अमृत वेला करूंगी, मुरली सेंटर पर सुनूंगी, हर घंटे में 5 मिनट चार्ज करूंगी, शाम को 6:30 से 7:30 योग में बैठकर आपको अपने दिल में बुलाऊंगी, रात को आपके प्यार के याद की गोदी में मुरली पढ़कर अपने सारे दिन का समाचार देकर आपके याद की गोदी में विश्राम करूंगी बाबा, अपने ऊपर रहम करूंगी, पुण्य कमाऊंगी, पुण्यात्मा बनूंगी बाबा। हाथ नीचे करें, दिल से बाबा को देखें, गीत भी सुने, प्रतिज्ञा भी करें।
चरणों में जगह मांगी थी हमें, दिल में बसा लिया,
चरणों में जगह मांगी थी हमें, दिल में बसा लिया।
थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया,
आपका काल दर्शी, वरदान भरी हमें बनाया पिकार दर्शी।
जन्मों के पुण्य फले हैं प्रभु दया है इतनी बरसी, पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया।
पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया।
थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया।